इशिका के अचानक गायब होने की वजह से सब काफी परेशान थे। ऊपर से उसका फोन भी बंद होने की वजह से पृथ्वी इशिका की लोकेशन नहीं निकाल पा रहा था। इस बीच अभिमान इशिका को लेकर वहां पर पहुंचा। अभिमान को इशिका पार्क में मिली थी। हालांकि अभिमन्यु ने यही फैसला किया था कि वो इशिका के दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं डालेगा। वो पास से जुड़ी सभी बातें बताने के बजाय धीरे धीरे उसके खुद याद आने का इंतजार करेगा। इशिका को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तो वो काफी परेशान थी। ऊपर से पार्क में अकेली भी बैठी हुई थी। इशिका की हालत अभिमान समझ सकता था। एक तो उसे कुछ याद नहीं था, ऊपर से कोई उसे कुछ बता भी नहीं रहा था। अभिमान खुद काफी लाचार महसूस कर रहा था, इसलिए उसने इशिका को कुछ जरूरी बातें बता दी थीं, जैसे अभिमन्यु उसका पति है और राधिका सिंघानिया उसकी असली माँ। अभिमान ने इशिका के सामने कुछ सबूत भी पेश किए थे और फिर वो इशिका को लेकर राजवंश विला पहुंच गया था। जिस तरह से इशिका अभिमन्यु से बात कर रही थी, उसे अभिमन्यु को लगा कि इशिका को सब याद आ गया है और वो उसे गले लगाकर खड़ा था। इस बीच अभिमान वहां से चला गया था। कुछ देर तक अभिमन्यु के गले लगे रहने के बाद इशिका उससे अलग हुई और बोली, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ था या मेरी याददाश्त चली गई थी तो तुम्हें मुझे सब बता देना चाहिए था। बाकी चीज़ें तो मुझे भले ही छुपा सकते हो, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी कभी नहीं, आज नहीं तो कल ये सामने आनी ही थी। शुक्र मनाओ मुझे तुम्हारा रिलेटिव मिल गया और उसने मुझे सब सच बता दिया, वरना मैं इस वक्त मिसेस सिंघानिया को गलत समझ रही थी। तुम्हें सब याद नहीं आया है, इशिका की बातों से अभिमन्यु ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। इशिका ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया था। इशिका को कुछ भी याद नहीं आया था, ये जानकर अभिमन्यु के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए थे। इशिका ने अभिमन्यु के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, मुझे कुछ याद ना आए लेकिन अब मैं सच जानती हूँ, इस तरह डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अभिमन्यु ने इशिका के हाथ पर अपना हाथ रखा और हामी भर दी थी। उसे वैसे भी जल्दबाजी नहीं थी, उसके लिए इशिका की हेल्थ सबसे ज्यादा मायने रखती थी। फिर भी तुम्हें इस तरह बिना बताए नहीं जाना चाहिए था, मिसेस सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हैं, मैं कॉल करके बता देता हूँ, अभिमन्यु बोला। उसने कॉल करने के लिए जैसे ही अपना मोबाइल निकाला, इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इशिका ने नामे सिर हिलाकर कहा, तो मिसेस राधिका सिंघानिया मेरी रियल मॉम है, वो अनजान इंसान जिसे उनका मैं बिजनेस पार्टनर समझ रही थी वो मेरे रियल डैड। लगता है अभिमान ने थोड़ी ही देर में तुम्हें काफी कुछ बता दिया है, तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना, दिमाग पर कोई प्रेशर तो फील नहीं हो रहा ना, अभिमन्यु ने कंसर्निंग वे में पूछा। मैं ठीक हूँ, उल्टा अब ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ, तुम मेरी हालत समझ नहीं सकते थे जब सब लोग मेरे साथ कुछ ज्यादा ही केयरफुल रहकर बात कर रहे थे। मिसेस सिंघानिया, जिन्होंने पहले कभी मुझसे ठीक से बात नहीं की थी, अचानक न केवल वो मुझे सिंघानिया मैंशन ले आई थी बल्कि अपने कमरे तक में सोने की परमिशन दे दी। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था, ऊपर से आदर्श सिंघानिया और मालविका वहां पर नहीं थे, इशिका ने सख्त आवाज में कहा। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी। पिछले कुछ दिन सिर्फ अभिमन्यु के लिए ही नहीं बल्कि इशिका के लिए भी काफी भारी बीते थे। अचानक इशिका के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए थे। उसने अभिमन्यु से पूछा, तुम्हारी दादी मेरे घर चली आई थी और मुझे बहू कह रही थी, वहां तक तो ठीक था, लेकिन नक्श ने झूठ क्यों बोला? उसने ये क्यों कहा कि तुम्हारी वाइफ कोई और है और लंदन में रहती है, जबकि वो तो मेरा अच्छा दोस्त था? तुम अपनी यादें भूल चुकी हो, अगर तुम्हें याद रहता तो पता चलता कि नक्श राजवंश तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने तुम्हारे बजाय आयशा से शादी की सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम सिंघानिया फैमिली की नाजायज औलाद थी, और जब तुम्हारा सच सामने आया, तुम्हारी डॉक्टर मर्चेंट होने की आइडेंटिटी रिवील हुई, तो वो पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ गया था, अभिमन्यु ने गुस्से भरी आवाज में कहा। नक्श की वजह से भी उसे काफी कुछ सहन करना पड़ रहा था। इशिका को आज के दिन काफी कुछ पता चला था। वो सुबह से बिना कुछ खाए पिए बाहर घूम रही थी। ऊपर से जैसे जैसे अभिमन्यु उसे बताते जा रहा था, इशिका के चेहरे के भाव गंभीर होते जा रहे थे। वो याद करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। रिलैक्स करो, तुम्हें अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, बस इसीलिए मैं कुछ बताना नहीं चाहता था। तुम अंदर चलकर पहले कुछ खा लो और दवाइयां लेकर आराम करो, अभिमन्यु ने इशिका को समझाया। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। वैसे भी वो सच में काफी थक गई थी, आज का दिन उसके लिए काफी भारी रहा था। इशिका को खाना खिलाने और उसे दवाइयां देने के बाद अभिमन्यु ने उसे अपने कमरे में लेटा दिया था। हालांकि इशिका अपने इस नए घर को एक्सप्लोर करना चाहती थी और दादी से मिलना चाहती थी, पर थके होने की वजह से उसे कुछ ही देर में नींद आ गई थी। वहीं अभिमन्यु इशिका को लेटाने के बाद सीधा नक्श के पास पहुंचा। अब उसे नक्श से किसी तरह का खतरा नहीं था, इशिका सच जान चुकी थी। ऐसे में अगर नक्श उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी करता तो वो उस पर यकीन नहीं करती। वहीं अभिमन्यु को अचानक अपने सामने देखकर नक्श थोड़ा सकपका गया था। वो हड़बड़ाते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई प्रॉमिस यहाँ से चला जाऊँगा, पर मेरे बिजनेस को कुछ मत कीजिए, बहुत मुश्किल से मैंने और मॉम ने उसे थोड़ा स्टेबल किया है। वैसे तो तुम यकीन करने लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी छोड़ रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आगे से इशिका से दूर रहोगे, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने इशारे से पृथ्वी को नक्श को खोलने के लिए कह दिया था। नक्श को थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बावजूद अभिमन्यु ने उसके साथ कोई खास सख्ती नहीं दिखाई थी। जब नक्श वहां से जाने को हुआ तब अभिमन्यु बोला, मेरी वार्निंग याद रखना, सोच लो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं सामने वाले को किसी लायक नहीं छोड़ता हूँ। नक्श ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाने लगा। दूसरी तरफ पलटते ही उसके चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने मन ही मन कहा, चाचू सच में कई बार आप बहुत इनोसेंट बिहेव करते हैं और आपकी ये दूसरों पर यकीन करने की आदत आपको मुसीबत में डाल देती। इस बार मैं सीधा इशिका के पास जाऊंगा और उसे हमेशा के लिए आपसे दूर लेकर चला जाऊंगा। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बिजनेस को बर्बाद करो या मेरी मॉम को। बस जाने से पहले उस इंसान का शुक्रिया कहना बनता है जिसने मेरी मदद की। चिंता मत कीजिए, मैंने आपके लिए भी पार्टनर तैयार कर रखी है। नक्श तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से जा रहा था। उसके वहां से निकलते ही पृथ्वी बोला, मैंने इसकी गाड़ी में ट्रैकर और कैमरा लगा दिए हैं। ये खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता है, बेवकूफ कहीं का। इसे लगता है कि ये हमारी नाक के नीचे प्लानिंग करेगा और हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इतने अरेंजमेंट के बाद भी कुछ आदमियों को इसके पीछे भेज दो, वो उस शख्स से जरूर मिलेगा जो उसकी मदद कर रहा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरा नया दुश्मन कौन पैदा हो गया, अभिमन्यु ने जवाब दिया। इन सब उलझन के चक्कर में अभिमन्यु अभिमान के बारे में पूरी तरह भूल चुका था। वहीं उसके कहे मुताबिक पृथ्वी अपने आदमियों के साथ नक्श के पीछे था। अभिमन्यु ने मिस्टर और मिसेस सिन्हानिया को इशिका के मिलने की बात बता दी थी। हालांकि उसने अभी तक ये नहीं कहा था कि इशिका उनकी सच्चाई जान चुकी है, बस अभिमन्यु ने शाम को उन्हें डिनर पर इन्वाइट किया था।
वहीं दूसरी तरफ अभिमान गोवा से सीधा मुंबई पहुंच चुका था। शाम के वक्त सिन्हानिया मेंशन में रौनक का माहौल था। सगाई का फंक्शन सिन्हानिया मेंशन में हो रहा था। आशी और बाकी सिन्हानिया फैमिली को यही लग रहा था कि अभिमान सगाई के लिए नहीं आएगा। इस वजह से आशी परेशान थी और तैयार तक नहीं हो रही थी। काजल आशी को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी सुनने को तैयार नहीं थी। इसीलिए काजल ने आशुतोष को आशी के कमरे में बुलाया था। आशुतोष को देखते ही काजल ने कहा, आप ही समझाइए आशु इसे, जब आकाश भैया ने कमिटमेंट दी है तो फिर अभिमान का पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर ये तैयार क्यों नहीं हो रही है? कुछ ही देर में रस्म के लिए गेस्ट आते ही होंगे। काजल के चेहरे पर गहरी मायूसी के भाव थे। आशी के तैयार नहीं होने की वजह से वो भी तैयार नहीं हुई थी। मैंने अभिमान को मैसेज कर दिया है और वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। तुम्हें किसी और पर यकीन नहीं है, लेकिन अपने पापा पर यकीन करो। मैंने तुम्हें जुबान दी है, अगर वो सगाई में नहीं आया तो तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, आशुतोष ने आशी को समझाते हुए कहा। आशी ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। आशुतोष ने काजल को भी तैयार होने का इशारा किया। उन दोनों के वहां से निकलते ही आशी को तैयार करने मेकअप आर्टिस्ट आ गई थी। उसके साथ उसकी दोस्त मानसी भी थी। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुमने अभिमान को खुद से शादी करने के लिए मना ही लिया। वो बेचारा तो जानता तक नहीं है कि 5 साल से वो जिस लड़की को अपनी पत्नी समझकर झेल रहा है उसका तो दूर दूर तक उससे कोई रिश्ता नहीं है, मानसी ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। पहले नहीं था लेकिन अब बनने वाला है, सिर्फ 3 दिन की बात है, आज सगाई तो 2 दिन बाद शादी। मुझे तो लगता भी नहीं कि कभी असली आशिका सिन्हानिया आने वाली है। लगता है या तो वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती या मर गई होगी या उसे खुद पता नहीं होगा। वो जब तक आएगी तब तक मेरे और अभिमान की शादी को लीगल वैल्यू मिल जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी, आशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आशी अपनी इस जीत पर खुश थी। तृप्ति भी आशी और अभिमान की सगाई के बारे में जानती थी। आशी उसे अपनी माँ नहीं मानती थी, लेकिन फिर भी तृप्ति उसकी सगाई से काफी खुश थी। तैयार होने के बाद जब आशी ने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो तृप्ति उसकी नजर उतार रही थी। सेलिना ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो वो चिढ़ गई थी। आप अपनी उस सो कॉल्ड रियल बेटी के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हैं मॉम, उसे तो आपसे बात करने तक की तमीज नहीं है, और ये हैंडसम हंक मैं डिजर्व करती हूँ ना कि वो बदतमीज लड़की, सेलिना ने मुंह बनाकर कहा। उसे बुरा लग रहा था कि जिस लड़के को उसने पसंद किया था वो किसी और से शादी करने जा रहा था, ऊपर से उस लड़की से जिसने न केवल उससे उसकी माँ का प्यार छीना था बल्कि उसकी पसंद के लड़के से भी शादी करने जा रही थी। मैं तेरे लिए उससे भी अच्छा और हैंडसम हंक ढूंढ दूंगी, वैसे भी विवाह की शादी उसके साथ 5 साल पहले ही हो चुकी है, तृप्ति ने उसे प्यार से समझाया। 5 साल पहले शादी हो गई थी तो दोबारा क्यों कर रही है, सेलिना ने आंखें छोटी करके पूछा। क्योंकि वो लड़का पहले उस शादी को नहीं मानता था, अब घर वालों के दबाव में आकर उसे सबके सामने विवाह से शादी करनी पड़ रही है। बहुत सवाल पूछती हो तुम, चले जाओ मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाकर लेकर आओ, अब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। मिस्टर स्काई ने आशिका को भी ढूंढ लिया है, आशिका और मिस्टर स्काई की शादी हो जाए उसके बाद हम एक अच्छी जगह वेकेशन के लिए जाएंगे, तृप्ति ने सेलिना को बहलाते हुए कहा। तृप्ति को अच्छे से पता था सेलिना को क्या पसंद है, और उसे किस तरह अपने काबू में रखना है। वेकेशन का नाम सुनते ही सलीना खुश हो गई थी और कॉफी बनाने के लिए किचन एरिया में आ गई थी। हालांकि उसके दिमाग में अभी भी आशी और अभिमान ही चल रहे थे। मॉम की वो लड़की खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती है जिसने आशिका की जगह ले रखी है। मानना पड़ेगा मॉम कितनी चालबाज है। सिंघानिया फैमिली की रियल बेटी को किडनैप करके एक बुरी लाइफ दी और अपनी बेटी को वहां प्लांट कर दिया। जो भी हो, वो हैंडसम हंक अपने साथ इतना बड़ा धोखा डिजर्व नहीं करता। क्या हो अगर मैं उस लड़की की सच्चाई फैमिली को बता दूं और आशिका को उसके रियल परिवार के पास पहुंचा दूं? सेलिना ने खुद से बात करते हुए कहा। आशी ने जिस तरह से उससे बात की थी, उसके बाद वो उससे बदला लेने के लिए उल्टे सीधे प्लान बनाने लगी, बिना ये सोचे कि अगर आशिका अपनी असली फैमिली में अपनी जगह पहुंच गई तो इसका क्या नतीजा हो सकता है। मैं ऐसा ही करूंगी, फिर मैं देखती हूँ उसकी शादी कैसे होती है, वो भी इतनी ग्रैंड तरीके से। मजा तो तब आएगा जब वे उसे घर से धक्के मार कर निकाल देंगे और मजबूरी में उसे वापस अपनी माँ के पास आना पड़ेगा। घमंड है ना उसे अपने पैसों और क्लासी लाइफस्टाइल पर। यहाँ एक एक पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा। सेलिना ने अपने मन में पूरी तरह ठान लिया था कि आशी की शादी होने से पहले वो उसकी सच्चाई सिंघानिया फैमिली के सामने लाकर रहेगी। कई बार इंसान जलन के मारे कुछ भी कर जाता है। देखते हैं सेलिना का प्लान काम करता है या नहीं। आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।